cocaína.
Só com o Eca, né?
Oi, custo cocaína.
Cujo tachau?
Pide rugos, não.
Cujo cocaína? Cujo te acho?
कोई गाल करो न जी
लिखो तो आया
अस्सलाम वालेकुम सामीन प्रोग्राम है कुछ तो कही मैं हूँ आपकी मेज़बान शहनाज अजीज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं लेकिन इससे पहले कि हम मेहमान का तारुफ करवाएं मैं चाहूँगी कि एक झलक आप उनके फ़न की सुनिए
Assalamu alaikum. It's our third time in Pakistan. I want to say thank you for making us feel so welcome each time.
Jazz is broad in its appeal, but one of the most purely American art forms.
Mr. Salman, Mr. Moeb, Mr. Ajmal Khan, to collaborate with these guys is like a dream come true.
تو سمین یہ فنکار ہیں آپ نے ان کے ساز کا تو اندازہ ہی کر لیا ہوگا بانسری یعنی فلوٹ اور ہمارے فنکار کا نام ہے سلمان عادل صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم عادل صاحب
وعلیکم السلام
بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے اور یہ جھلک جو تھی یہ آپ کا ایک فیوژن ہے ویسے تو آپ کی بہت آپ خوبصورت بانسری کی بے شمار ریکارڈنگز ہیں آپ کی لیکن میں چاہ رہی تھی کہ خاص طور سے کیونکہ یہ بھی ایک بڑا فن ہے اب یہ جو فیوژن ہے تو تھوڑا سا بتائیے ہمارے سننے والوں کو اس سے پہلے کہ آپ کے بارے میں بات کریں کہ کہاں پہ یہ تھا کانسرٹ جو تھا
یہ امریکنز یہاں آئے تھے پاکستان میں تو یہاں پی این سی اے پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس میں یہ منعقد ہوا تھا پروگرام اور اس میں تقریباً چار پانچ انسٹرومنٹلسٹ تھے اس میں پیانو پلیئر سیکسوفون پلیئر بیس گٹارسٹ ڈرمر اور اس میں پاکستانی میوزیشن میں اجمل صاحب تھے میں تھا اور ایک اور میوزیشن اور بھی تھے
تو کیونکہ جو آپ لوگ دھن بجائے تھے شہباز قلندر تو اس میں بانسری کا متبادل جیز بینڈ جو ہے یہ بڑا مشہور جیز بینڈ ہے تو اس میں بانسری کا متبادل کیا تھا سیکسوفون
بانسری کا متبادل تو ونڈ انسٹرومنٹ ہی ہو سکتا ہے کوئی یا تو بانسری کا متبادل تو بانسری ہی ہوگا اور ونڈ انسٹرومنٹ میں سیکسوفون ہے
سیکسوفون جی ہاں اسی لیے میں نے پوچھا ہے
کلیرینیٹ ہے سیکسوفون ہے اور ونڈ انسٹرومنٹ ہی اس کا متبادل ہو سکتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا جو میچ ہے وہ ونڈ انسٹرومنٹ ہی کرے اس میں وزن بھی ہو سکتا ہے اور سنگنگ بھی ہو سکتی ہے دیکھیں اگر کوئی سوال جواب ہوتا ہے یا جسے ہم کہتے ہیں امپروائزیشن کسی بھی چیز کے ساتھ ہو سکتی ہے سنگنگ کے ساتھ ہو سکتی ہے انسٹرومنٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے
بات کریں گے لیکن میں چاہتی ہوں کہ ذرا سا آپ اپنے فن کے آغاز کے بارے میں بتائیں صفدر عیسیٰ نے یہی سوال پوچھا ہے فیس بک پر और हंदवाड़ा कश्मीर से, भारतीय कश्मीर से तहा भट्ट ने कहा है कि आपके प्रोग्राम का और आपके मेहमान का इंतज़ार है। नज़ीर ज़रगर, तौसीफ़ वानी, जावेद चौधरी और अब्दुल रज़ाक साहिबान, इन सब ने भी आपको खुशामदीद कहा है। तो मैं शुक्रिया अदा कर देती हूँ सलमान की तरफ से। लेकिन सलमान, अब आप पहले सवाल का जवाब दीजिए कि फ़न का आगाज़ कैसे हुआ?
जी, फन का आगाज जैसे हादसाती तौर पे कोई चीज आपकी जिंदगी में आ जाती है, आप नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं और रूटीन में पढ़ना पढ़ाना और क्या उसे कहते हैं, स्कूल जाना, स्कूल से आके ट्यूशन चले जाना, ट्यूशन से पारा पढ़ना और पूरा मतलब वो घर में जैसे होता है ना, घरों का माहौल होता है उसका। तो लेकिन हमारी फैमिली में म्यूजिक का कोई वो नहीं था।
अच्छा,
तो ये मुझे शौक नहीं था इसका। बेसिकली मुझे मेरे एक कजन आए थे 3 महीने, ये खाला के बच्चे होते हैं ना जैसे आपस में खेलते हैं,
जी जी,
तो उनको शौक पैदा हुआ था, नबील को, मेरे कजन है। तो हमें ये पता चला कि हमारे एक तायाजाद हैं, वो भी हमारे पास ठहरे हुए थे, तो उनको थोड़ी सी फ्लूट आती है, मतलब 2 सॉन्ग आते हैं, लट्ठे की चादर और हीर रांझा, वो बजा लेते हैं
अभी तक।
तो उन्होंने हमें सुनाया जिससे, जी जी, तो नबील को शौक पैदा हुआ, मुझे शौक नहीं था। लेकिन नबील ने मुझे कहा कि हम ऐसा करते हैं, पैसे जमा करते हैं और एक फ्लूट खरीदते हैं दोनों मिलके और खालिद भाई से सीखते हैं। तो हमने उसका जो जेब खर्च होता है वो जोड़ जोड़ के जो है ना, हमने देखे उस वक्त हमने 40 रुपीज की फ्लूट खरीदी थी, आज से 15 से 18 साल पहले की बात है ये
जी,
शायद इसको 20 साल गुजर गए। तो उस वक्त हमें एक फ्लूट मिली और हमने खालिद साहब से सीखना शुरू किया, जो हमारे थर्ड कजन थे, तो उन्होंने हमें सिखाना शुरू किया। और मुझे तो इतना पता नहीं था कि ये मेरे अंदर इस तरह का टैलेंट मौजूद है। और 3 महीने सीखा, उसमें लट्ठे की चादर और हीर रांझा गाने से स्टार्ट किया।
हाँ।
तो बाकी फिर नबील साहब चले गए, खालिद साहब भी चले गए, 3 महीने की छुट्टियां गुजर गई, लेकिन मैं आधे आधे गाने निकालना शुरू कर दिए मैंने, और आधे आधे गानों को, किसी गाने का मुकरा निकाला, किसी गाने की अस्थाई निकाली, किसी का अंतरा निकाला, तो लेकिन वो पूरे नहीं होते थे। फिर असल तलाश फिर तब से शुरू हुई है, अब इसको आगे कैसे सीखा जाए और आगे इसको कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि इन चीजें
थोड़ा सा मैं यहाँ आपसे कहूंगी, एक दरखास्त है, कुछ शोर है आपके पीछे काफी, तो ये आपके टेलीफोन में तो नहीं हो सकता, मेरे ख्याल है पीछे खटपट काफ़ी है आपके, तो थोड़ा सा आप ऐसी जगह हो सकते हैं जहाँ पे ये शोर थोड़ा कम हो जाए।
ये हमारे इलाके में एकदम से जो है ना, किसी शादी की बारात का वो हो गया, अभी ये लोग चले गए हैं यहाँ से।
अच्छा, फायरिंग हो रही है?
चले गए, ये फायरिंग और ढोल और ये वो एकदम से हमारी गली में आ गए ये लोग।
अच्छा अच्छा,
अभी ये चले गए हैं, दूर चले गए।
चलिए फिर ठीक है, सही है,
अभी नहीं आएगी आपको।
अच्छा अच्छा, हाँ तो आप बता रहे थे
पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में हर चीज तकरीबन ओपन माहौल है, ओपन कल्चर है यहाँ,
बस गोलियां खुशी में हवा में चलाए जाए तो बेहतर है, ये हमारी तमन्ना है।
हवा में चला रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं लोग।
अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप बता रहे थे, तो ये बताइए कि जो नबील और खालिद साहिबान थे आपके कजन्स, तो वो अभी तक 2 ही गाने बजा रहे हैं क्या? उन्होंने भी कुछ आगे फन को बढ़ाया अपने?
नहीं, वो तो उधर ही रहे, उधर ही हमेशा वो, मतलब उससे आगे, क्योंकि हमारी फैमिली में भी बाद लोगों को इजाजत मिलती है, बाद लोगों को नहीं, तो वो लोग इस बस अपने शौक ही था उनका। तो लेकिन मैंने चूंकि इसमें फिर साथ की तलाश शुरू कर दी और मैंने सीखना शुरू कर दिया आगे भी।
अच्छा,
तो ये बड़ा लंबा सफर है, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको सुनाता हूँ, बड़ी लंबी बात है ये।
नहीं, साथ साथ बातें होती रहेंगी। नहीं, मैं लेकिन मैं यहाँ क्योंकि बात आई कि एक तरह से मौसीकी जो थी एक शजरे ममनुआ थी आपके खानदान में, तो मैंने अपने फेसबुक पर आपके वाले साहब का जिक्र किया है, रमज़ान आदिल साहब का, जो एक बहुत ही मुमताज़ सहाफ़ी थे, उनका इंतकाल हो चुका है। तो थोड़ा सा, क्योंकि आपके वाले साहब मुखालिफ थे मौसीकी के, तो किस तरह छुपा गए, एक तो वाले साहब के बारे में बताइए और ये कि कैसे कामयाब हुए आप उनसे छुप कर म्यूज़िक सीखने में।
हाँ जी, वो एक तो सबसे बड़ी बात ये कि वो जमात इस्लामी से ताल्लुक रखते थे और काजी हुसैन अहमद साहब और सैयद अबू अला मौदूदी के शागिर्द हैं वो।
अच्छा,
तो उस लिहाज से हमारे घर में बहुत ज्यादा दीनी माहौल और सुबह उठ के नमाज पढ़ना फजर की और इस तरह से मतलब एक पूरा प्रॉपर दीनी माहौल था। लेकिन मुझे इसका शौक हुआ और मैंने जिद की उनसे कि मैंने सीखना है, तो वो तो शुरू में तो नहीं माने और मैंने छुप छुप के खैर सीखना शुरू कर दिया। और कभी इतनी मुझे फ्लूट आ गई थी क्योंकि मैंने खालिद भाई से थोड़ी सी सीख ली थी, तो फिर मैंने स्कूल के बैग में रख के ले जानी और इस तरह से, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी मुखालफत शुरू हो गई अब्बू की, तो मैंने पिंडी आर्ट काउंसिल में मैंने जो है ना ज्वाइन कर लिया एज अ टीचर.
अच्छा.
मुझे उसको ही सिखाने के लिए उन्होंने रख लिया और मैं उस माहौल में बैठना शुरू हो गया. उस माहौल में जब लोग सीखते थे असाजा भी थे उसमें और वो मेरी पिक चूंकि बहुत तेज थी और मैं फौरन चीज पिक कर लेता था तो मैंने कमरे के अंदर चार्ट लगे हुए देखे राग भोपाली राग दरबारी राग भैरवी और ये चीजें मैंने वहां पे लर्न करना शुरू कर दी क्लास के माहौल में बैठ के खाना भी और साधा क्राम से सीखना भी. तो माहौल से मैंने सीखना शुरू कर दिया और साथ साथ मैंने हल्के हल्के प्रोग्राम भी करना शुरू कर दिए. जैसे आर्ट्स काउंसिल के प्रोग्राम होते थे तो वो मुझे अपने प्रोग्राम में परफॉर्म करने का मौका देते थे तो उससे मेरी जो है ना काफी ज्यादा हौसला अफजाई हुई. और लेकिन अब्बू की और मेरी जंग शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता.
अच्छा.
ने मुझे बिल्कुल इजाजत नहीं दी इस चीज के तुम वो बहुत ज्यादा मुखालफत थी लेकिन फिर वालदा ने थोड़ा सा सपोर्ट किया मुझे और मैं परफॉर्म करते करते टीवी लेवल तक पहुंच गया पीटीवी.
अच्छा.
तो अब्बू को फिर थोड़ा सा ये हुआ कि ये तो कोई इसके अंदर कोई ऐसी कोई है टैलेंट है इसके अंदर कोई कि इसको तो उनके दोस्तों ने भी समझाया कि इसको आप जो है ना कंटिन्यू करने दें.
अच्छा.
थोड़ा सा मेडिकल साइड पे हो जाओ यहाँ पे शोर काफी है.
तो क्यों ना हम आपका म्यूजिक थोड़ा सा सुनवा रहे हैं तो हम वही सुनवाते हैं आप एक साइड पे हो जाइए. खूबसूरत सलमान बहुत अच्छी आप बांसुरी बजाते हैं. तो ये बताइए मुझे क्या लेकिन ये कुछ रांझे साहब को बांसुरी बजाते देखकर एक बड़ा ही रोमांटिक सा तस्वीर है बांसुरी का हमारे कल्चर में जो है तो कुछ इसका असर आप पे भी हुआ कुछ रोमांस वगैरह जब आप बांसुरियाँ बजा रहे होते अगर आप बताना चाहें तो.
जी जी मैं ज़रूर बताऊँगा. रोमांस का ताल्लुक जो है ना वो बांसुरी की वजह से नहीं होता है और रोमांस हर बंदे की जिंदगी में होता है लेकिन उसका बांसुरी से ये ताल्लुक है कि जब रोमांस इंसान किसी सच्चे इश्क से गुजरता है तो उसके काम के अंदर एक दर्द की जो है कैफियत वो आ जाती है.
तो आपके काम में दर्द की कैफियत आई क्या?
जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इश्क के मजाजी से इश्क के हकीके की तरफ हूँ और मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं इंसान से इश्क से खुदा के इश्क की तरफ ट्रांसफर कर जाऊंगा. तो मेरे काम के अंदर रूहानियत और इस चीज की सूफीज्म का बहुत ज्यादा ताल्लुक है.
अच्छा.
जो कि मुझे इसकी मजाजी से इसकी हकीकी की तरफ लेके आया.
Thank you. سلیم علی منہاس نے اور خالد عمر نیاز ان دونوں نے بھی آپ کو خوش آمدید کہا ہے. سوال نہیں لکھا ہمارے سننے والے, اگر کوئی سوال فیس بک پر بھیجیں گے تو میں پڑھ دوں گی, آپ کو یاد دلا دوں کہ آپ اس پروگرام کے دوران ہمارے ٹول فری نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0800-777-7789. اور ہمارے مہمان جو ہیں سلمان عادل ہیں, بہت ہی ممتاز جو ہیں فلوٹ پلیئر ہیں. ہم ابھی آپ کے لیے میں نے ایک مسٹری گیسٹ رکھا ہوا ہے انڈیا سے, تو ابھی ان کو بھی ملاتے ہیں ہم تھوڑی سی دیر میں اور آپ سے ان کو ملائیں گے. دیکھیے وہ بھی آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں, لیکن اب آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ اس کا اس ساز کا کیا مستقبل ہے پاکستان میں, کیونکہ ایک تو ہے نا کہ جو بینڈ ہیں زیادہ تر اس میں کیا بانسری, آپ جو نئے بینڈ ہیں ان میں ہے بانسری کا کوئی دخل, فلوٹ پلیئرز ہیں ان میں شامل ان بینڈز میں؟
بس دیکھیں کسی بھی فیلڈ کے اندر جو ہے نا مستقبل تبھی روشن ہوتا ہے جب آپ کچھ روٹین سے ہٹ کے کچھ کرتے ہیں. تو بانسری شاید میں اپنے بارے میں تو کچھ ایسا نہیں کہنا چاہتا, لیکن میں تھوڑا سا یہ بتانا ضرور سمجھوں گا کہ میں کچھ منفرد کیا کرتا ہوں جس سے میرا تھوڑا سا نام ڈفرینٹ ہے, اور پاکستان کے ان تین چار لوگوں میں میرا نام آتا ہے جو پاکستان کے کلچر کو بھی باہر لے کے جاتے ہیں.
جی
بالکل. اور اس میں ایک ایسا سٹائل پلے کیا جاتا ہے جو مطلب ہو سکتا ہے کہ شاید ہر گاؤں میں آپ دیکھیں, ہر قصبے میں فلوٹ کا شوق لوگوں کو ہوتا ہے.
جی.
کچھ لوگ بکریوں کے ساتھ فلوٹ بجاتے ہیں, کچھ لوگ گاؤں میں چرواہے ہوتے ہیں وہ بھی بجاتے ہیں, کوئی موچی ہے کوئی, مطلب اس کا یہ عوامی انسٹرومنٹ ہے اور اس کا شوق جو ہے نا نچلے لیول تک سے لے کر اوپر کے لیول تک لوگوں تک ہوتا ہے کیونکہ یہ سستا انسٹرومنٹ ہے.
جی.
اب سوال یہ ہے کہ اس میں ڈفرینٹ کیا ہے, جو کلاسیکی موسیقی ہے فوک ہے اور لائٹ میوزک ہے, ان سب کو جو ہے نا اس کے اوپر پلے کرنا اور اس چیز کو ڈھالنا اس چیز کے اوپر, وہ میں نے کوشش کی ہے اس میں. اور کبھی میں فیوژن کرتا نظر آؤں گا آپ کو, کبھی میں غلام علی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں گا, میں نے مہدی حسن صاحب کو ٹریبیوٹ دیا ہے ان کے سامنے ان کی زندگی میں, وہ پرفارمنس بھی میں نے آپ کو بھیجی ہے پیار بھرے دو شرمیلے نین, وہ میں نے ان کے سامنے بیٹھ کے بجایا ہے.
اچھا.
تو پھر جی جی, اور اس میں پھر یہ کہ اسٹوڈیو ورک کرنا, اسٹوڈیو ورک میں ڈراموں کا بیک گراؤنڈ میں فلوٹ بجانا, اور سینس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر ایک دکھی سین ہے تو اس میں بانسری کیسے بجے گی, اور ایک خوشی کا سین ہے تو اس میں بانسری کیسے بجے گی, پھر مختلف زبانوں میں جو آپ کے یہ فورن کنٹریز سے جو یہ وزیر اعظم پریزیڈنٹس آتے ہیں تو ان کے سامنے ان کی زبانوں میں ان کا میوزک یاد کر کے فلوٹ پر پلے کرنا. میں نے ابھی لاسٹ ٹائم یہ جو 10 ممالک کے صدر آئے ہوئے تھے ہمارے یہاں پاکستان میں, تو میں نے اس میں میں نے تاجکستان, ازبکستان اور اس طرح کی تین چار میں نے ٹیونز پلے کی ہیں, اور ابھی میں لبنان جا رہا ہوں پاکستان کا میوزک پریزنٹ کرنے کے لیے. تو مطلب اس سے ہٹ کے مستقبل تو روشن ہے, لیکن ان لوگوں کے لیے ہے جو ہٹ کے کچھ کرتے ہیں. اگر تو روٹین کی بانسری بج رہی ہے جو سب لوگ بجا رہے ہیں تو سکوپ تو نہیں ہے, لیکن کچھ اگر ہٹ کے کریں تو پھر تو بہت زیادہ سکوپ ہے.
کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ لائیو, آپ نے ابھی ذکر کیا پیار بھرے دو شرمیلے نین, آپ ہمیں سنا دیں گے یہ؟ تو چلیے تھوڑا سا یہ میوزک سنتے ہیں, اس کے بعد ہم مہمان سے ملتے ہیں. ہمارے مہمان کا نام ہے راشد مانی صاحب, اور یہ پیلی بھیت یو پی سے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں. جی راشد صاحب, آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ تو راشد صاحب, میں نے اصل میں جب میں ان کی فیس بک پر گئی تو میں نے دیکھا آپ کا پیغام ان کے نام, جس میں آپ بتائیے کہ آپ نے کیا لکھا تھا, کیا پیغام تھا آپ کا ان کے لیے؟
میں نے لکھا تھا, بھائی جان میں محمد راشد, میری فرم کا نام ہے محمد قمر فلیوٹ,
جی
پیلی بھیت انڈیا سے, اور جناب میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں, اور بھائی صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ایڈریس مجھے سینڈ کیجیے میسنجر پر, میں آپ کو فلوٹ گفٹ کرنا چاہتا ہوں.
تو آپ کا کہاں سے میں نے اتنا بڑا قدردان ڈھونڈا ہے سلمان صاحب, بات کیجیے آپ ان سے, آپ ان سے بات کر سکتے ہیں.
جی جی, قمر بھائی بات کر رہے ہیں.
جی قمر تو ان کے ابا کا نام ہے.
اچھا,
اور ان کی شاپ جو ہے ان کے نام پر ہے.
اچھا, ان کا کیا نام ہے؟
ان کا نام ہے راشد مانی.
جی جی, اور میں نے جواب دیا تھا, میرے خیال ہے میں نے شاید ایڈریس بھی سینڈ کیا تھا ان کو, مجھے شاید یاد بنتا ہے. اگر میں نے نہیں سینڈ کیا تھا تو میں ضرور سینڈ کروں گا. اور مجھے تو اپنے قدردان اور اپنے سے پیار کرنے والے لوگوں کی بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ قدر ہے.
اور راشد صاحب کا کمال یہ ہے, جب میں نے ان سے بات کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اتنا نہیں ہے کہ یہ جو فلوٹ بناتے ہیں اور بیچتے ہیں, بلکہ ان کا ایک اپنا نیٹ ورک ہے, اور انہوں نے مجھے بہت سے نام بھی بتائے بہت سی, تو میں بہت ان کی شکر گزار ہوں. آپ دونوں ساتھ رہیے گا, لیکن میں کچھ آپ کو کالرز کو لینا چاہتی ہوں. ہمارے ساتھ ہیں حبیب حسین شاہ صاحب کشمیر سے. جی حبیب حسین شاہ.
جی جی, السلام علیکم. سید حبیب حسین شاہ ڈوکے بول رہا ہوں.
جی السلام علیکم.
اور شہناز ہے, میں آپ کے بڑا بہت ہی متاثر ہوں, بلکہ میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ آپ کو یہ آسمانی مخلوق ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اتنا اچھا کام, خاص کر کے آپ کی وہ جو کہانی ہوتی ہے کتنے غریب لوگوں کا کام کرتی ہے, تو میں خود بھی بانسری بجاتا ہوں.
اچھا,
جو آپ نے بات کی رومانس کی, یہ بالکل بات صحیح ہے. بانسری چونکہ موسیقی کی پیدا ہے اور یہ بالکل دل چیرتی ہے, اور میں بچپن میں گانے بھی گاتا رہا ہوں. میں آپ پہ آرٹیکل بھی لکھے ہوئے, میں آپ کو کسی دن بھیجوں گا.
اچھا ضرور,
سننا چاہیں تو دوسرے موبائل میں میں آپ کو سنا دوں.
ابھی تھوڑی دیر میں سنتے ہیں آپ سے, آپ دوبارہ ہم آپ کو کال کر لیں گے, نمبر چھوڑ دیجیے گا, کیونکہ بہت اس میں شور ہے اور حبیب صاحب کی. لیکن حبیب صاحب پروگرام آپ سنتے رہیے گا. جی ہاں, مجھے پتا ہے یہ بہت, اور اس وجہ سے پھر آپ لوگوں کی لائن بھی خراب ہو رہی ہے, لیکن ہم ان سے بعد میں بات کریں گے. جاوید قائم خانی ہمارے ساتھ ہیں, اور پلیز آپ لوگ سوالات مختصر رکھیے. جی ثناء اللہ مری صاحب ہیں ہمارے ساتھ کولو بلوچستان سے, اور نسیم صاحب. جی ثناء اللہ.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. ثناء اللہ
میڈم, کیسے ہیں؟ خیریت سے؟
میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کچھ پوچھیں گے؟
جی, آپ کی مہمانوں سے, آپ کی مہمان کرامی سے ایک سوال ہے, تو ناراض نہ ہونا, تو آپ سے وہ ان سے ایک سوال ہے کہ ماشاء اللہ ان کا دینی ماحول ہے, تو میوزک کے دوران مطلب آپ اپنی زندگی مطلب نماز پڑھتے ہیں, ان کا اہتمام کرتے ہیں, نماز کا نمبر ایک.
کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں, اگر مجھے پتا ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں, انہوں نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا کہ ان کے گھر کا مذہبی ماحول ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ مذہب ایک بہت ہی پرائیویٹ معاملہ ہوتا ہے, اور ہمیں لوگوں سے اس طرح کے سوال نہیں پوچھنے چاہیے کہ مذہب کے بارے میں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں, یہ ان کا اور خدا کے بیچ میں معاملہ ہے. اور یہ پروگرام ہے فن سے متعلق, میں درخواست کروں گی سوال کریں. ان کے والد موسیقی کے خلاف تھے, اور انہوں نے آخر میں انہیں پھر اجازت دے دی.
شانی ملک بول رہا میں.
جی جی جی, سوال پوچھیں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام بھیا. ہمارے مہمان جو ہیں بہت ہی ممتاز فلوٹ پلیئر ہیں پاکستان کے, اور ان کا نام ہے سلمان عادل, اور ایک اور ہمارے ساتھ انڈیا سے بھی مہمان ہیں, ان کا نام ہے راشد مانی, جو کہ بہت پشتوں سے ان کا خاندان جو ہے نا بانسری بنانے کا کاروبار میں
بناتے ہیں.
جی
سب سے پہلے میں فلوٹ نواز کا شکر ادا کروں گا کہ اس نے ہمیں مہمان کلیان میں ایک زبردست چیز سنائی دونوں.
جی,
اور اس کے علاوہ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ راگ دونوں ایک
راگ کیا, وہ کچھ سوال پوچھ رہے تھے, ان کا سوال کٹ گیا. آپ پلیز دوبارہ اگر کر سکتے ہیں فون کر لیجیے گا تاکہ آپ کے سوال کا جواب دے دیں. اچھا اب مانی صاحب, اب آپ بتائیے کہ کیا خاص چیز آپ کو پسند. پہلے تو میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گی کہ انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے 20 سال پہلے بچے تھے اور بانسری بجانی شروع کی تو 40 روپے کی ایک بانسری آتی تھی پاکستان میں, تو اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا قیمتیں ہیں بانسریوں کی. مجھے یاد ہے کہ جیسے کوہلی عورتیں ہوتی ہیں خانہ بدوش, یہ بنا کے بانسری کافی سستی بیچتی ہیں, سر پہ ٹوکریاں لیے بانسریاں بیچتی ہیں, تو کیا فرق کیا ہوتا ہے مختلف قیمتوں کی جو بانسری ہوتی ہے اس میں؟
لیکن میم بات یہ ہے, جیسے ہم لوگ یہاں رہتے ہیں انڈیا میں, بہت چھوٹی سی سٹی ہے پیلی بھیت.
جی,
سلچر آسام گوہاٹی سے یہ اس کا بامبو آتا ہے.
اچھا,
جیسے مان کر چلیے ایگزامپلی 5 روپے 10 روپے کا کوئی پیس آ رہا ہے.
جی,
تو اس میں سے چھٹائی کرنا پڑتی ہے, جیسے ریئیکشن نکالنا پڑتی ہے, اور جو ہمارا کریکٹ پیس ہے جو مطلب بالکل اوکے ہے اس پیس کو نکالنا پڑتا ہے ہم کو.
اچھا,
تو اس کے ساتھ میں جب جو چیز ہماری رزلٹ ہے وہ تو ہماری گئی, ہم نے اس کا پیسہ دے رکھا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم اسی میں اس کا پیسہ جوڑ دیتے ہیں. لیکن میڈم جی, جیسے ایسا ہوتا ہے نا, ہم تو فلوٹس میکر ہیں, ہم کو جو ہے سب سے مل کر چلنا پڑتا ہے. تو جیسے مان کے چلیے ابھی میں کوئی ای ویس کا فلوٹ بناتا ہوں سفید 3 کا.
ٹھیک ہے,
تو مان کے چلیے میرے کو لاگت اس میں جو بھی آئی جیسے بھی آئی, مطلب مان کے چلیے جیسے آتی ہے 100 روپے کی لاگت, तो मैं अपना मेहनताना लगाकर 120 रुपए या फिर 125 रुपए ले लेता हूँ पार्टी से, कस्टमर से।
अच्छा,
लेकिन अब पार्टी आगे क्या कमाई करती है इसके बारे में तो पार्टी को पता हो। बोलो, वो लोग तो फिलहाल हमसे ज्यादा महंगा ही बेचते हैं।
लेकिन मैं ये पूछना चाहती थी कि क्या कोई ऐसी टेक्निक्स हैं कि जिस तरह बांसुरी के बनाने का तरीका ऐसा हो जिससे सुर भी बेहतर हो सके, या हर तरह की बांसुरी में?
जी, नहीं, हाथ से तो काम होता ही, खैर ये हाथ का काम है, हुनरबंदी का, लेकिन इसकी डाइयां आती हैं, स्केलें जो हमारे पुरखों से काम चला रहा है उन लोगों के हाथ की डाइयां हैं, हम पर सांचे हैं जिससे हम दूसरी फ्लूट्स बना सकते हैं। मतलब उस पर हमको ये पक्का कंफर्म है कि ये इस स्केल से फ्लूट्स बोलेगी।
अच्छा, यही बात मैं आपसे पूछूंगी सलमान, कि क्या फर्क होता है मुख्तलिफ तरह की जो बांसुरियां होती हैं उनमें?
ये बहुत बड़ा आर्ट है जी, बांसुरी बनाना। और इसमें जैसे हम मौसीकी में हमारा सी से लेकर सी तक ऑक्टेव है पूरा, पहले सफेद से लेकर ऊपर के पहले सफेद तक, इसमें मुख्तलिफ हैं और बी सी डी ई एफ जी ए बी सी तक जो है ना ये, और इसके बीच में कोमल नोट भी आते हैं। तो मतलब हर सुर की फ्लूट अलहदा होती है, यानी कि हमारे अगर 12 सुर हैं तो 12 सुरों की फ्लूट अलहदा है।
अच्छा, अब जैसे आप...
और इसमें हमें एक जिद्दत और भी दी जाती है कि जैसे उस हर सुर का कोई बेस भी दे देते हैं और उसमें मिडल भी है, शार्प भी है, तो कुल मिला के ये 25 बांसुरियां बनती हैं जिसका ये सेट मेरे पास है।
अच्छा,
25।
तो क्या आप एक परफॉर्मेंस के दौरान मुख्तलिफ बांसुरियां इस्तेमाल कर रहे होते हैं?
जी, इसमें हम लोग टोन्स के हिसाब से लेते हैं, लेकिन अभी एक सिंगर है अगर वो मुख्तलिफ सुरों से गाता है तो हर सुर की बांसुरी डिफरेंट है।
अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि हम आपका ये जो थोड़ी सी रिकॉर्डेड हमारे पास है म्यूजिक वो सुनते, आप अगर अपनी बांसुरियां कुछ अपने सामने रखकर हमें थोड़ा सा परफॉर्म करके बताएं कि क्या किस तरह, क्योंकि इस तरह लोगों की समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या कहने सलमान, बहुत जबरदस्त, बहुत खूबसूरत आप बजाते हैं। तो जैसे ये हमने अभी सुना है लंबी जुदाई, मुझे रेशमा याद आ गई जब मैं ये सुन रही थी। आपने रेशमा के साथ परफॉर्म किया है आपके, मैं देख रही थी फेसबुक पर, तो मुख्तलिफ जिन आर्टिस्टों के साथ आपने किया, कुछ उनके बारे में सबसे ज्यादा आपका पसंदीदा कौन सा है जिनके साथ आपने काम किया?
मैंने बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ परफॉर्म किया है, उनमें पसंद है वो आबदा परवीन जी।
उनसे मिलने को तो क्या कहिए जिगर, उनसे मिलने को तो क्या कहिए जिगर, खुद से मिलने को जमाना चाहिए। यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, ओ यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, ओ यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने, ओ यार को हमने जा बजा देखा। बरसरे नाज और अदा देखा, बरसरे नाज, ओ बरसरे नाज और अदा देखा, ओ यार को हमने, ओ यार को हमने जा बजा देखा।
गुलाम अली साहब,
अच्छा,
इनके साथ काम करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैंने बैरून मुल्क हमारे आर्टिस्ट हैं हंस राज हंस
जी,
उनके साथ बजाया तो मुझे उनसे बड़ा प्यार मिला, उनसे बड़ी मोहब्बत मिली मुझे। उन्होंने ये फरमाया मेरे बारे में कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपने ही देश में गा रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि मैं कहीं पे आके किसी दूसरे मुल्क में गा रहा हूँ।
अच्छा।
तो ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है, और बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स के साथ मैंने काम किया है।
अच्छा,
तो
चलिए, तो
मुझे बहुत अच्छे,
बहुत पसंद है आपको। अच्छा, तो ये बहुत बड़े फनकार भी हैं, और फिर ऐसे लोग कदर करना भी जानते हैं दूसरे फनकार की। तो थोड़ा सा अब आप हमें बताइए, मुख्तलिफ जो आपने बताया कि सुर के लिए एक बांसुरी,
मैं शुरू यहाँ से करता हूँ। ये अभी आपने लंबी जुदाई सुना है ना, तो इसमें एक हीरो का सुर बज रहा था। ये लंबी जुदाई सुना है ना आपने, इसमें फ्लूट बज रही थी, तो इसमें हीरो का सुर मैंने बजाया।
अच्छा, तो
वो मैं आपको दो मुख्तलिफ बांसुरियों पे सुनाऊंगा। उसको एक तो बेस कहते हैं, और जो दूसरी पे मैं सुनाऊंगा वो उसकी मिडल होगी, यानी शार्प होगी।
ठीक है,
यानी वही ऊंचे सुरों पे बोल रही की छोटी फ्लूट होगी और एक बेस फ्लूट होगी, लेकिन इनकी आवाज और इनकी जो टोन है ना, ये कम अपना राशिद मानी भाई समझते हैं इस चीज को, वो भी आपको बताएंगे इस बारे में कि इनका ऑक्टिव और इनका सुर सेम है, लेकिन सिर्फ जैसे एक बच्चे के टोन और होता है और एक बड़े का टोन और होता है, लेकिन सुर सेम होगा।
ठीक है,
जरा सुनिए
जी। तो हम राशिद मानी जी,
अभी ये मैंने बेस पे बजाया, अभी अभी इसी की शार्प छोटी फ्लूट सुनिएगा और सेम सुर यही होगा।
अच्छा,
ये आवाजों का फर्क है। इस फ्लूट का जो जो सुर है वो है जी जी नेचुरल, और
अच्छा।
पहले जो मैंने फ्लूट बजाई थी वो जी नेचुरल बेस है और ये जी नेचुरल शार्प है।
तो ये तो मानी साहब से पूछते हैं कि मानी साहब ज्यादा बेहतर जी, मानी साहब सुनिए आपने ये मुझे बताइए, मतलब ये किस तरह, जाहिर समझना मुश्किल है बगैर तस्वीर के, लेकिन किस तरह प्रोड्यूस किए जाते हैं।
मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि एक मान के चलिए, जैसे एक कोई यंग बॉयज है मान के चलिए 20 से 30 के बीच का
जी,
और एक चाइल्ड है जो की 10 से 15 की एज का है बीच का। जब वो 20 से 13 वाला गाएगा तो उसका वॉइस होगा तो वो बेस क्वालिटी का आएगा, जैसे भारी आएगा, और जो जो 10 से 15 के बीच की एज का होगा चाइल्ड, उसकी जब वो गाएगा उसी गाने को और उसी सुर से गाएगा, लेकिन उसकी क्वालिटी में फर्क आएगा क्योंकि उसकी वॉइस चेंज हो जाएगी। जैसे हम गला कहते हैं, इसी तरह से फ्लूट्स का रहता है, जो बेस क्वालिटी रहती है तो उसका साउंड रहता हैवी, जो मिडिल फ्लूट रहती है ट्यून वही होगी, सुर भी वही होगा, लेकिन क्वालिटी चेंज होगी। जैसे कि वॉइस एक ऊंचे, जैसे हम कहेंगे एक गहरो सुर पे बजेगी नीचे तो वो ऐसे करके चलेगा, और एक हम पंचम पे कहेंगे तो वो बहुत ऊंचा सुर हो जाएगा। इसी ये चीज का फर्क होता है।
अच्छा,
अलग अलग क्वालिटी में।
आवाज दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
हमारी और आपकी जिंदगियों में जन्म लेने वाली ऐसी कहानियाँ जिन्हें अक्सर कोई सुनने वाला नहीं होता।
हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है।
बहुत डर लगता है, बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली ऐसा करंट लगाते हैं।
माइक्रोफोन की दूसरी जानिब नहीं बल्कि उसके सामने हमारे साथ साथ मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज में उर्दू रेडियो और वेब पर सुनवाएंगे।
प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहक होगी।
फोन से रास्ता करते 2 लाख रुपया लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ।
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत। उर्दू सर्विस के ये प्रोग्राम मीडियम वेव 972 पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नशर होते हैं।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
बल्कि आपने अभी ये बात कही तो मैं सलमान से ये भी पूछूंगी कि सलमान आपने कुछ क्लासिकल म्यूजिक भी सीखी या सिर्फ आप बांसुरी से लग, क्योंकि आपका क्लासिकल स्टाइल है, लेकिन वैसे आप म्यूजिक जानते हैं क्लासिकल?
जी जी, मैं बिल्कुल, इसके लिए मैंने गायकी की भी तरबियत ली है और अभी भी मेरे उस्ताद उस्ताद मोहतरम है जो बांसुरी जिनसे मैंने सीखी है वो उस्ताद बाबर अली है, जिनका बड़ा नाम है
जी
पूरी दुनिया में। और वोकल्स की जो क्लासिकी की ट्रेनिंग लेता हूँ मैं उस्ताद शौकत मंजूर साहब हैं यहाँ पे, उनसे लेता हूँ, वो उस्ताद सलामत अली खान के शागिर्द हैं और मैं उनसे बंदिश सीखी है, बंदिश सीखता हूँ। और जो बुजुर्गों का जो सीना बसीना इल्म है ना, एक तो किताबी इल्म है और एक सीना बसीना जो इल्म आया है, वो चीजें इंटरनेट पे नहीं मिलती हैं, वो उस्तादों से सीखने से मिलती
है। तो आपको जाहिर है आपका बांसुरी तो आपकी सभी सुनते हैं और आप बहुत ही आपका मुमताज एक नाम है, आपका गाना शायद कम लोगों ने सुना होगा, तो क्यों ना आज लाखों लोग सुनेंगे अगर आप थोड़ा सा हमें कुछ गा के सुनाए, कोई भी चीज जो आपको पसंद।
मैं कोशिश करता हूँ कि जो आपको गा के सुनाऊं कोई बंदिश ही हो, तो क्लासिक की बंदिश हो और उसके साथ साथ थोड़ा सा फ्लूट भी छेड़ूंगा।
ठीक है, सही है, तो करें शुरू फिर।
ठीक है, मैं कोशिश करता।
जी जी बिल्कुल सुनाइए।
ये राग एमन है और इसमें एक बंदिश है, 19 मात्रे की बंदिश है ये, इसको बोलते हैं इंदर ताल के अंदर ये बनाई गई है और बहुत ही खूबसूरत ख्याल है, आओ दरबार।
अच्छा तो चलिए आप शुरू करें जी।
मैं तोरे ख्वाब नैया पूरी आगी नैया करो पार जी सरकार आओ
वाह 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 बहुत खूब
नीरे गरे गा नीरे गा गरे गा नीरे गा गरे गा मा पारे गरे गा मा
बहुत खूब सलमान साहब बहुत जबरदस्त
तो हुआ है क्या ना
भाई कुछ तो कहिए ना
कहो ना कहो
कुछ तो चाहो
कम में बुबुश ना
कुछ कहिए ना
लख होते हुआ या
कहो ना कहो
ओ कोशे ताको
अपने सवालात के साथ इस प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा शिरकत करें हमारे माहिरीन आपके सवालों के जवाब देंगे हमारा ये प्रोग्राम पाकिस्तान में हफ्ते की रात को 10 से 11 बजे तक पेश किया जाता है आप हमारे टोल फ्री नंबर पर मुफ्त कॉल कर सकती हैं। नंबर नोट कर लीजिए 0800-777-89 हफ्ते की रात 10 से 11 बजे तक फोन कीजिए 0800-777-89 प्रोग्राम है
तो कहिए
और बल्कि मानी साहब आप बताइए कैसा लगा आपको आपने सुना अभी
जी जी उस्ताद को सुना था मैं उस्ताद मोहतरम जनाब सलमान आजिज साहब का फैन हूँ और जो भी भाई साहब के वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हैं सारे मैंने डाउनलोड कर रखे हैं और जो भी भाई साहब फेसबुक पे डाउनलोड करते हैं वो भी मैं अपलोड कर लेता हूँ
वैसे आपको खुद भी गाने का शौक है क्या
जी 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 हाँ
सीखा भी है आपने
नहीं नहीं मैंने सीखा नहीं है फिलहाल
तो ये जो उस्ताद मोहतरम है काफी छोटे से उस्ताद है वैसे आमतौर से इतने जल्दी लोग सीख लेते हैं इतना ज्यादा जितना सलमान ने सीखा सलमान बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं और मैंने देखा इनके नाम के साथ उस्ताद लिखा होता है वैसे उस्ताद का खिताब किस तरह मिलता है किसी को जो मिलता है ये बताइए मुझे
जैसे मन के चलिए कोई भी चाहने वाला होता है जिसका जैसे कोई जिसको जो पसंद आया भाई ये मन की बात होती है जिसको जो पसंद आ जाए और जो आर्टिस्ट है कलाकार है हमसे ज्यादा हुनरमंद है तो मान के चलिए उसको मन अपने आप कहने लगता है कि ये उस्ताद है
अच्छा
उस्तादाना बात अलग ही चिखती है अलग ही मालूम हो जाती है कि इसमें कुछ गुण है
अच्छा
जो अपनी तरफ भेज सकते हैं अपने वासी को
भाई सलमान सुना आपने किस आपको बड़े जो जानते हैं म्यूजिकी को उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया बड़ा उस्ताद आपको कहते हैं तो आपको आमतौर से उस्ताद का लकब दिया जाता है
मेरी खुशनसीबी है कि मुझे इस तरह लोग प्यार करते हैं और राशिद भाई ने मेरे बारे में ऐसे कहा मेरी खुशनसीबी है और मैं अपने आप को उस्ताद तो नहीं कहता हूँ लेकिन मैं शुक्र अदा करता हूँ सलाह का कि इस साज की वजह से मुझे जो है बांसुरी नवाज कहा जाता है इस बांसुरी ने मुझे नवाजा है तभी मैं बांसुरी नवाज कहलाया गया हूँ वरना मेरी क्या मजाल थी मैं तो कभी भी नहीं पसंद करता अपने नाम के साथ उस्ताद लेकिन लोग कहते हैं तो बस फिर मैं नहीं कुछ कह सकता और मेहनत को कहते हैं ना मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती और सच्चे दिल से मेहनत करें तो और पब्लिक और लोग जो चाहने वाले जो हैं वो फिर जो आपको प्यार करते हैं तो फिर स्कोर भी होता है इंसान का आहिस्ता आहिस्ता जो आपका कोई स्कोर है उम्र के लिहाज से आप जब स्कोर करते हैं कहाँ कहाँ आप परफॉर्म करते हैं किस किस के साथ परफॉर्म करते हैं तो बाद लोग मैं तो शायद इतना अच्छा नहीं हूँ लेकिन शायद आपदा जी के साथ बैठने की वजह से शायद, और शायद गुलाम अली साहब के साथ बैठने की वजह से, बड़े लोगों के साथ बैठने की वजह से, तो उनकी थोड़ी सी लोगों में भी आ जाती है, फिर अपनी मेहनत भी है, ये सारी चीजें और दुआ करम और ये सब चीजों का मजमुआ है।
आपके लिए कॉम्प्लीमेंट एक आपके एक फैन ने दिया था, मैं फेसबुक पे जब पढ़ रही थी आपके बारे में, तो उन्होंने ये कहा था कि आपके वालिद ने जो रिस्क हलाल सारी जिंदगी खाया और उन्होंने सौबतें भी उठाई एक ईमानदार जर्नलिस्ट की हैसियत से, तो शायद उसका सिला आपकी सूरत में उन्हें दुनिया में मिला। तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी थी, मैंने फेसबुक पे भी डाला है ये जो कोट था उनका। अच्छा, मैं दो तीन कॉलर्स कॉल लेना चाहूँगी। जाहिद हुसैन हमारे साथ हैं, दादू से दरख्वास्त है, बहुत मुख्तसर सवाल, सिर्फ सवाल पूछेगा आप लोग क्योंकि वक्त नहीं है। जी जाहिद साहब।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम जाहिद साहब जी, क्या पूछेंगे आप?
सलमान भाई को सबसे पहले तो मेरी तरफ से सलाम, और राशिद भाई को भी मेरी तरफ से सलाम।
वालेकुम सलाम जी।
बहुत ही अच्छा आपका प्रोग्राम जा रहा है, अनबिलीवेबल। सलमान भाई से मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक गाना है, इन आंखों की मस्ती में मस्ताने हजारों हैं, अगर ये बजा के हमें सुनाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा।
उमराव जाना दा का, ये तो मुझे भी बहुत पसंद है। चलिए ठीक है, फरमाइश नोट कर ली आपकी। अच्छा, शमी मलिक साहब बलूचिस्तान से। जी शमी मलिक,
सलमान आदिल साहब से मैं पहले पूछता तो सवाल ये कि दो राग होते हैं, एक एमन पूरिया कल्याण, एक पूरिया धनासरी हिंदी क्लासिक में। कश्मीरी क्लासिक में ये दोनों राग अलग-अलग मौजूद हैं, पूरिया कल्याण या मोर पूरिया धनासरी, हमारी बलोची में दोनों एक साथ होते हैं, जिसको कुर्दी तहरू कहते हैं। नंबर टू, सलमान साहब आप गजल गा रहे, कोई चीज बजा रहे हैं, बिल्कुल तीसरे सुर से, तीसरे सफेद से, मंद्र सप्तक में, फिर मध्य सप्तक में अब जाएंगे, तीसरे से बजाएंगे या फिर ताल सप्तक में, तो इन तीनों के लिए एक ही बांसुरी होगा।
आपका ये जो सवाल है ना, एक ही बांसुरी वाला, ये हम पूछ लेते हैं क्योंकि इतना वक्त नहीं है इतने जवाब देने का, आपको पहले आना चाहिए था, लेकिन हम सलमान को दोबारा बुलाएंगे, आप बेफिक्र रहिए। वैसे अंदाजा ही होगा कि आपका अपना इल्म बड़ा वसी है इस बारे में। जी सलमान, इनके सवाल का जवाब दीजिए।
पूरिया कल्याण और पूरिया धनासरी में सबसे बड़ा फर्क ये है कि उसमें वापसी पे जो धा है कोमल है, पूरिया धनासरी का धा कोमल है, और पूरिया कल्याण में एमन की तरह सुर लगते हैं, लेकिन सिर्फ रिखव कोमल है, बाकी कोई सुर कोमल नहीं है। अच्छा। ये सबसे बड़ा इनमें फर्क है। तो दूसरा जो इन्होंने सवाल किया था कि बेस तीसरे सफेद से अगर हम ऊपर के सप्तक पे बजाएंगे तो उसकी फ्लूट अलहदा होगी, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हमें कौन से सुर चाहिए। बेस के अंदर भी सब मौजूद है, सुर तो सारे वही है ना, तो हाँ। लेकिन अगर हमें टोन चेंज करने की जरूरत पड़ेगी तो हम उसकी शार्प भी मौजूद है, तीसरे सफेद की मिडल भी मौजूद है, उसकी शार्प भी मौजूद है।
अच्छा अच्छा, एक मैं राशिद साहब से पूछना चाहती हूँ। राशिद साहब, आपका खानदान जो है कई पुश्तों से इसी कारोबार में है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है फन जो है, आपको क्या लगता है कि लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है इसमें, क्योंकि इससे आपको अंदाजा होता होगा, या कम हो रही है?
नहीं, इस आज के पीरियड में जो अब से 10 साल पहले जो काम था उससे ज्यादा अब 10 साल के बाद में अब काम घटने के बजाय बढ़ चुका है, क्योंकि अच्छा। म्यूजिक में आजकल के दौर में 99% यंग बॉयज घुस रहे हैं, इसलिए ये काम बढ़ता जा रहा है। मतलब हमारा एक कहना रहता है, हमारा एक मतलब रहता है, हमको पैसा नहीं कमाना, कुछ नहीं कमाना है, हमको नाम कमाना, इज्जत कमानी है, बस अपने मित्रों से जुड़ना है, ताकि हमसे आगे और लोग जुड़े, म्यूजिक से बड़े, म्यूजिक से गठबंधन हो, ताकि ताकि हमारा भी नाम होगा और साथ में हमारे कलाकार भी बढ़ते जाएंगे।
तो कब कितनी पुश्तों से आपका खानदान है इस कारोबार में?
मेरे परदादा साहब से ये चल रहा है।
अच्छा, क्या नाम था आपके परदादा का?
जनाब आजम साहब।
और कमर साहब आपके वालिद थे? अच्छा, और अब आपके जो औलाद है वो भी आप वो पढ़ रहे हैं कहीं, या वो भी सी?
एक मिनट, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी एज 25 इयर्स है और मैं अनमैरिड हूँ।
ये भी ज्यादा बड़े नहीं है हमारे जो सलमान है, लेकिन इनके तो तस्वीर आपने देखी होगी, दो प्यारे से जुड़वा बच्चे हैं और एक मेरा ख्याल बेटा, तीन बच्चे हैं ना?
जी,
तीन बच्चे।
अच्छा, तो खैर इनसे तो मैं ये नहीं पूछ सकती, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है जब उनकी शादी होगी और बच्चे होंगे तो बताएंगे हमें उनकी दिलचस्पी कितनी है। आपके बच्चों को दिलचस्पी है सलमान म्यूजिक में?
मेरे बच्चे तकरीबन सब के सब आर्टिस्टिक हैं।
अच्छा,
और जो बड़ा बेटा है और जो छोटी बेटी है ना, इन दोनों के अंदर बहुत ज्यादा गट्स हैं म्यूजिक के। बच्चे बिल्कुल अभी तो छोटे हैं, उनकी समझ नहीं आती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं म्यूजिक को।
अच्छा, और आप सिखाएंगे बच्चों को म्यूजिक, यानी अगर उनको शौक हुआ थोड़ा बहुत, तो बाकायदा तरबियत में देंगे उनको आप?
मैं मैं समझता हूँ कि म्यूजिक सीखना इसलिए जरूरी है कि आपको म्यूजिक इंसानियत सिखाता है, आपके अंदर वो त्वादन पैदा करता है, जिस्म के अंदर रिदम पैदा करता है। तो ये तो कुछ और भी वो बन जाए, लेकिन म्यूजिक जरूर सीखें, मेरी ख्वाहिश है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि वो जो बनना चाहे मैं उन्हें वो बनाऊं, जो वो अंदर से हो मैं उन्हें वो बनाऊं।
बिल्कुल। अच्छा, आपने जिक्र किया था कि आपके भाई जो है, नाम मैं भूल गई, नोमान भाई का नाम है आपके, नोमान को शौक है?
नहीं है मेरे पास में, हाँ, नोमान आदिल।
अच्छा, तो चलिए, हम मेरी ख्वाहिश तो थी कि नुमान को भी हम लाते और नुमान सुनाते हमें कुछ। लेकिन ये बताइए मुझे कि आप हैं कहाँ, रावलपिंडी में या इस्लामाबाद में, किस जगह हैं आप?
जी, मैं रावलपिंडी में सादकाबाद में रहता हूँ।
अच्छा, तो ट्रैवल आप बहुत करते रहते हैं क्योंकि जितने कॉन्सर्ट आपके जगह जगह होते हैं।
जी, ट्रैवल में, ज़्यादातर ट्रैवल में रहता हूँ।
तो सलमान, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में अब ऐसा जो म्यूज़िक सीन है ऐसा है कि एक आदमी फुल टाइम जो है प्रोफेशन अपना, मसलन आप फ्लूट प्लेयर हैं, तो ये आपका फुल टाइम प्रोफेशन बन सकता है या आपको कुछ और करना पड़ता है?
जी, मेरा फुल टाइम प्रोफेशन है।
अच्छा,
तो इसमें कुछ आपको ऐसा हटके कुछ करना होता है कि आप दूसरों से मुनफरिद हों तो तब तो ठीक है, वरना अदरवाइज दूसरों की तरह ही करना है तो फिर उसमें यहाँ पे बहुत कंपटीशन है।
अच्छा, आपसे अभी उन्होंने फरमाइश की थी हमारे एक सुनने वाले ने, उमराव जान अदा के गाने की, शरियार साहब की गजल है उन आंखों की मस्ती में, तो चूंकि मैं, जी जी, आप प्लीज़ सुनाइए और सामिन जितने वो सुर अपना शुरू करें, मैं बता दूं कि हमारे फनकार जो हैं सलमान आदिल हैं, जो रावलपिंडी से हमारे साथ हैं, फ्लूट प्लेयर हैं, और इसके अलावा हमारे साथ पीलीभीत यूपी से राशिद मानी साहब हैं जिनके ख़ानदान का पुश्तों से यही कारोबार है। तो चलिए सुनते हैं अपने कॉलर की फरमाइश पर उमराव जान अदा की ये गज़ल। बहुत शुक्रिया। और अब हम चलते हैं इख्तिताम की तरफ प्रोग्राम के, और मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा चलते चलते आप हमें कोई कुछ सुनाइए, कोई वाकया अपनी ज़िंदगी से, अपने ख़ानदान से, अपने वालिद के बारे में, कोई भी अपनी ज़िंदगी की ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ, जिसने असर डाला आपकी ज़िंदगी पर।
जी वालिद साहब के बारे में मैं थोड़ा सा ये बता दूँ कि मैंने उनकी किस चीज़ को फॉलो किया है अपनी ज़िंदगी में, जो उनके कलम की सच्चाई थी उसको मैंने अपनी फ्लूट में ढाला है। और वो इतने सच्चे इंसान थे कि मैंने कभी भी एक तो उनको झूठ बोलते हुए नहीं देखा, और सच्ची बात जो थी वो कलम से लिख देते थे और रह नहीं सकते थे वो इस चीज़ के ऊपर, और ज्यादती बर्दाश्त नहीं करते थे वो किसी के साथ भी, किसी छोटे के साथ, किसी गरीब के साथ, किसी मस्कीन के साथ। अगर कोई उनके पास आ जाता था तो वो उसकी हेल्प करते थे। इवन कि मैं उनके साथ उंगली पकड़ के एक दफा ऑफिस जा रहा था तो मैंने देखा कि एक जो ये स्वीपर होता है ना ऑफिस में काम करता है, तो वो वहां पे सफाई कर रहा था, तो उसको पकड़ के कहते हैं कि तुमने स्वेटर क्यों नहीं पहना है, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने स्वेटर क्यों नहीं पहना है। तो कहते हैं अंकल मैं कल से पहनूंगा। नहीं नहीं, अगर तुम कल नहीं पहनोगे तो मैं तुम्हें अपना कोट उतार के दे दूंगा, और मैं तुम्हें कोट उतार के देता हूँ ताकि तुम्हें शर्म आए और तुम इस सर्दी में स्वेटर पहन के काम किया करो।
अच्छा।
मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं, मैंने उनको, इतने खुदा तरस आदमी थे, इतने रहम दिल आदमी थे, किसी के साथ भी जो है ना वो मतलब जाती नहीं करते थे, और मैं यही कहूंगा कि मैंने उनकी सच्चाई को फॉलो किया है और वो कलम से सच्चाई लिखते थे और मैं फ्लूट में सच्चाई बयान करता हूँ।
सलमान, मेरा ख्याल है कि जो सच है ना वो जो आदमी के अंदर का सच होता है उसके फन से भी जाहिर होता है आपके, इसीलिए जो एक फ़ैन ने आपके लिए एक कॉम्प्लीमेंट आपको दिया था मैंने वो शामिल किया था कि मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी थी, तो बड़ा फ़ख्र होगा आपके वाले साहब को, और वाकई उनकी ज़िंदगी की कमाई जो है उनके बच्चे अगर उस रिवायत को निभा रहे हैं।
आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
हमारी और आपकी जिंदगियों में जन्म लेने वाली ऐसी कहानियाँ जिन्हें अक्सर कोई सुनने वाला नहीं होता।
हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है। माइक्रोफोन की दूसरी जानिब नहीं बल्कि उसके सामने हमारे साथ साथ मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज़ में उर्दू रेडियो और वेब पर सुनवाएंगे।
प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहक होगी।
फोन से रास्ता करके 2 लाख रुपया लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ।
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत। उर्दू सर्विस के ये प्रोग्राम मीडियम वेव 972 पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नशर होते हैं,
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urdu.voa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
और मैं आखिर में शुक्रिया अदा करूँगी राशिद, आप भी कुछ शेयर करना चाहेंगे अपने वालिद साहब की कोई बात या अपने दादा साहब की कोई बात हमारे साथ?
जी 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 सुन रहा हूँ जी, जी मैं कहना चाहूँगा जैसे कि आपने देखा होगा नुमाइशें होती हैं, कुछ मेले वगैरह होते हैं, तो उनमें एक हर तरह तरह के सामान बिकते हैं, जैसे कि चाट पकौड़ी, जैसे खिलौने इलेक्ट्रॉनिक या फिर चाइना मेड या जो भी, उस तरह से फ्लूट्स बेचने वाले भी होते हैं, बंसी के बेचने वाले बांसुरी के।
अच्छा,
तो उस किसी समय में वक्त में जिस समय मैं नहीं रहा हूँगा, जन्म नहीं हुआ होगा, उस समय मेरे यहाँ वही काम हुआ करता था।
अच्छा,
लेकिन मेरे अब्बू जनाब मोहम्मद कमर साहब हमेशा यही चाहते थे कि उनका नाम आगे आना चाहिए। जहाँ हम रहते हैं हिंदुस्तान में, बहुत छोटी सी सिटी है पीलीभीत, अधिकतर लोग नहीं जानते। जैसे अब मान के चलिए अभी हम दिल्ली कॉल कर रहे हैं या मुंबई जाके पता के निकालते हैं कि पीलीभीत कहीं है, तो लोग नहीं जानते कि पीलीभीत है या नहीं है
जी।
तो एक उनका मानना यह था ताकि वो कुछ ऐसा करें जिससे पीलीभीत का नाम आ गया है और शहर के साथ साथ हमारा नाम भी आ गया है।
अच्छा।
लोगों को पता चलना चाहिए कि कुछ लोग हैं ऐसे जो फ्लूट्स बनाते हैं या सुरीले को इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं या पीलीभीत है जहाँ कहीं पर यूपी में हिंदुस्तान या नहीं है। जुनून था कि इसको म्यूजिक को मुझे आगे लेकर जाना है, अपने नाम को और अपने साथ साथ अपनी सिटी को।
तो मैं माफ कीजिएगा आपकी बात मैं काट रही हूँ, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। सलमान हैदर का और राशिद मानी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, आइंदा फिर कभी आप लोगों के साथ बातचीत रहेगी। तो शहनाज अजीज़ को इजाज़त दीजिए, हमारी प्रोड्यूसर असवर सैयद असवर इमाम थी और हमारी इंजीनियर थी निशवान काली। खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाय नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।